તારીખ 4/9/1998 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 195 પર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 702
પત્રાંક 195 જો 194 પત્ર મેં રીડિંગ થા वही यहाँ पर लिया है। सत्स्वरूप को अभेद रूप से अनन्य भक्ति से नमस्कार। पत्र के प्रारंभ में अपने निज स्वरूप को नमस्कार किया है, वो भी विशिष्ट प्रकार से किया है। अभेद रूप से और अनन्य भक्ति से, मैंने पूर्ण बहुमान से और विकल्प रहित भाव से, अभेद रूप से मैंने, भेद विकल्प के कारण से उत्पन्न होता है, अभेद रूप से मैंने निर्विकल्प रूप से, अब पत्र का प्रारंभ करते हैं। यह पत्र है, ये मुमुक्षु की भूमिका का प्रारंभ कैसे होता है वो दर्शाने के लिए यह पत्र है कि जिसे मार्ग की इच्छा उत्पन्न हुई है, मार्ग मैंने मोक्ष मार्ग, आत्मकल्याण का मार्ग की इच्छा जिसको उत्पन्न हुई हो, उसे सब विकल्पों को छोड़कर इस एक विकल्प को वारंवार स्मरण करना आवश्यक है। उसे सब विकल्पों को छोड़कर, सब मैंने कौन से हैं कि मार्ग संबंधी कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का विकल्प हो, धर्म साधन संबंधी किसी भी प्रकार का विकल्प हो, वो सब विकल्पों को छोड़ देना। सबसे पहले सब विकल्प को छोड़कर इस एक विकल्प को वारंवार स्मरण करना आवश्यक है। जो नीचे अवतरण चिन्ह में जो बात कही है वो बात आगे भी 86 पत्र में वो बात वो कह चुके हैं कि अनंत काल से जीव का परिभ्रमण हो रहा है, फिर भी उसकी निवृत्ति क्यों नहीं होती और वह क्या करने से हो, ऐसी चिंता। वास्तविक जीवन में भी सबसे बड़ी समस्या सबसे पहले मिटाई जाती है। जैसे रोग हो, दो तीन रोग हो तो सबसे बड़ा रोग पहले मिटाएंगे या छोटा मोटा मिटाएंगे? अनेक प्रकार की प्रतिकूलता हो उसमें सबसे बड़ी आपत्ति को पहले लक्ष्य में लेंगे या छोटी को लेंगे? वास्तविकता क्या है? तो सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? अनेक प्रकार की जीवन में उपाधियां हो सकती है, आदि व्याधि उपाधि, फिर भी मृत्यु सबसे अधिक से अधिक उपाधि का चिंता का विषय रहता है कि नहीं रहता है? मृत्यु की चिंता सबसे अधिक होती है कि नहीं होती है? होती है। तो अनंत मृत्यु की चिंता इससे अनंत गुणी हुई कि नहीं हुई, ये तो सादा गणित की बात है, सिंपल कैलकुलेशन की बात है। एक मृत्यु की भी बहुत चिंता रहती है तो अनंत मृत्यु की तो बहुत बहुत चिंता होनी चाहिए। फिर भी दर्शन मोह का प्रभाव से ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, न मृत्यु की भी चिंता आती है और न अनंत मृत्यु की भी चिंता हो रही है। किसी का मृत्यु का समाचार मिलता है, अरे बेचारा मर गया, जैसे हम तो मरने वाले है ही नहीं। दर्शन मोह वास्तविकता को भुला देता है। क्या करता है? वास्तविकता को भुला देता है। जिसका दर्शन मोह कुछ कम हुआ हो उनको आत्मकल्याण की भावना होती है, और आत्मकल्याण की जिसको भावना होती है वो आत्मकल्याण के लिए कुछ न कुछ करना चाहता है। ऐसे जीव को यहाँ मार्गदर्शन दिया है कि अगर तुम अपना आत्मकल्याण का कुछ उपाय करना चाहते हो तो सब विकल्प को छोड़ दो। तो पहले तुम जिस परिस्थिति में खड़ा हो उसको समझो तो तुमको उसकी चिंता आएगी। अनंत काल से इस जीव का परिभ्रमण हो रहा है, यानी मेरा परिभ्रमण हो रहा है। जीव का मैंने किसी और जीव का नहीं है, मेरा परिभ्रमण हो रहा है, प्रत्यक्ष बात है। फिर भी उसकी निवृत्ति क्यों नहीं होती? वो परिभ्रमण का नाश क्यों नहीं होता? ऐसी एक चिंता होनी चाहिए। जैसे भयंकर रोग की चिंता बहुत होती है, कैंसर वगैरह होता है ना, हाँ, उसकी चिंता करने का सिखाना नहीं पड़ता। उसके लिए कहीं सीखने को जाना नहीं पड़ता। और मिटाना चाहे तो चिंता को मिटा नहीं सकते। सीखने को जाना तो नहीं पड़ता, लेकिन मिटाना चाहे तो मिटा नहीं सकता। इस कैंसर से अनंत गुणा अधिक भयंकर ये भव रोग है, जिस रोग के कारण से जीव 84 लाख योनि में अनंत बार जन्म मरण कर रहा है। ये सबसे भयंकर रोग है। और उसका नाश हुआ नहीं है, इस रोग का नाश हुआ नहीं है, निवृत्ति मैंने नाश होना। तो वो क्या करने से इसका नाश हो उसकी चिंता होनी जरूरी है। कृपालु देव ने सबसे पहले इस बात को आगे क्यों की? क्यों भगवान की माला फेरने को नहीं बोले, क्यों पूजा भक्ति के लिए नहीं कहा, क्यों उपवास करने के लिए नहीं कहा, क्यों दयादान करने के लिए नहीं कहा, और क्यों शास्त्र पढ़ने के लिए भी क्यों नहीं कहा। हाँ, साधन तो बहुत से हैं धर्म के, इसकी बात क्यों किया। इसका कारण वो है कि संसार के सभी जीव किसी न किसी प्रकार की चिंता से घिरा हुआ है, है कि नहीं है? किसी न किसी प्रकार की चिंता से वो घिरा हुआ है। कोई कहेगा कि हमको कोई चिंता नहीं है, वो बात मानने लायक नहीं है। कम से कम मृत्यु की चिंता भी आएगी कि कभी न कभी मृत्यु होगा तो, अचानक होगा तो, और एक्सीडेंट की चिंता रहती है, रोग की चिंता रहती है, भविष्य की और वर्तमान की अनुकूलताओं की चिंता रहती है। संसार के सभी जीव फंसे हुए हैं उस चिंता में, पूरा माथा फंसा हुआ है, क्या हाथ पैर नहीं फंसा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में जीव कोई भी धर्म साधन करता है, उनको कुछ लाभ नहीं होता। उसका एक दृष्टांत हम देते हैं कि कोई मनुष्य है, आदमी पानी में तैरने को जानता है, पानी में गया, पानी में ऐसे डाई लगा के नीचे जा रहा है, उसमें इसका माथा फंस गया पत्थर के पुलाण में, पत्थर के जो पोल होती है ना, वो पोल में माथा फंस गया। अब तैरना तो हाथ पैर से होता है, कितना भी छटपटाए माथा फंस गया क्या करे। ऐसे हम लोग धर्म के क्षेत्र में, हमारा माथा तो फंसा है संसार में, पर हाथ पैर हलाते हैं पूजा करके, भक्ति करके, उपवास करके, दयादान करके, यात्रा करके, शास्त्र पढ़ करके, कुछ न कुछ करके हम हाथ पैर हलाते हैं, वो चीज कोई काम में नहीं आती। और चिंता छोड़ी छुट्टी नहीं जा छुटती नहीं। फिर आपको कोई कहे कि चिंता मत करिए, होने वाला होएगा, ऐसे छूटती नहीं चिंता। हमारा क्यों होगा, क्या होगा, हमारे परिवार वालों का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, पैसों का क्या होगा, मकान का क्या होगा, अबरू कीर्ति का क्या होगा, कुछ न कुछ विकल्प चलते ही रहते हैं। विषय चलते तो कि संसारी जीव ચિંતામાં ફસાયેલો છે અને ચિંતાથી મુક્ત થઈ શકતો નથી। નાની લોગ હૈ તો પરિણામ કે વિજ્ઞાન કો અચ્છી તરહ જાનતે હૈ કે એસી પરિસ્થિતિ મેં ક્યા કરના ચાહિએ। કહેને સે કે ચિંતા છોડ દો, એસી કોઈ ચિંતા કોઈ છોડ સકતે નહીં और किसी की छूटती भी नहीं। ऐसी परिस्थिति में उनको, इनकी चिंता को एक दूसरी चिंता में ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं कि तुमको चिंता ही करनी है ना, और चिंता नहीं छोड़नी है, तो छोटी मोटी बातों की चिंता क्यों करता है। सबसे बड़ी आपत्ति तेरे सिर पे खड़ी है, उसको क्यों नहीं देखता? चिंता तो तुमको सबसे बड़ी आपत्ति की होनी चाहिए। अगर बड़ी आपत्ति की चिंता नहीं करता और छोटी की करता है तो ये तो एक मूर्खता है और कुछ नहीं है। हाँ, जैसे कोई लाखों का नुकसान को तो नहीं समझे और 5-25 रुपये का नुकसान के लिए पूरी ताकत लगा देता है, पूरी शक्ति वहाँ खर्च करता है 5-25 बचाने के लिए। वो गुरुदेव एक दृष्टांत देते थे, एक लोभी आदमी था, बहुत लोभी था, रुई का व्यापार करता था। रुई में क्या होता था, तो बड़ा बड़ा जो रुई का धुकड़ा होता है ना, वो जिन वाले को बेच देता था। बेचने में क्या है कि वो लोग बारदान का पैसा नहीं देते थे, मुफ्त में ले लेते थे, और बारदान में कुछ रुई चौंटी हुई रहती थी, वो भी मुफ्त में जाता था। वो तोल में वो बात कर देते थे, बारदान को बात करते थे, नेट कितना वेट है उतना ही पैसा मिलेगा। उसमें रुई भी होती थी बारदाने में, तो वो क्या है कि उसमें से रुई निकालने को बैठ जाता था। सारे दिन रुई निकाले तो 100 ग्राम 200 ग्राम रुई उसमें से निकलती थी, तो उसको बचाने के लिए पूरा दिन खराब करता था। और दिन में जो भाव की बधागटी होती थी उसमें लाखों का फेरफार होता था, उनको मालूम नहीं पड़ता था। उस काम में लगा रहता था तो बाजार में उसका ध्यान नहीं रहता था, तो भाव बढ़ गए घट गए, क्या करना चाहिए, लेना बेचना कैसे करना चाहिए। मैं गुजराती में कहो छे खाड़े डूचा ने दरवाजा मोकड़ा। ऐसी हालत है कि बड़े नुकसान को तो समझे नहीं और छोटे नुकसान के पीछे पूरा जीवन जीव व्यतीत करता है। ज्ञानी इसकी चिंता को ट्रांसफर करते हैं कि देखो, तुम्हारे सिर पे परिभ्रमण की तलवार लटकती है, तुम उसका ध्यान रखो, उसका ध्यान करो, ख्याल करो और उसका कोई इलाज करो। इस वाक्य में अनंत अर्थ समाया है। एक वाक्य में कितना अर्थ समाया है? अनंत अर्थ समाया है। वो कैसे? बात तो एक वाक्य में लिखी है लेकिन अनंत अर्थ समाया है, ऐसा वाक्य लिखा है। कैसे वो होता है कि परिभ्रमण के कारण रूप परिणाम कितने? हाँ, सारे जीवन में जो भी परिणाम करता है संसारी जीव, वो सब परिभ्रमण का कारण बनता है। उसकी सूझ आती है, ये चिंतना करने से, परिभ्रमण की चिंतना करने से और इसके उपाय की खोज करने से हमारे परिणाम में जो परिभ्रमण का कारण है अनंत प्रकार का, उसकी सूझ आती है, वो समझ में आता है कि ये परिणाम मेरे परिभ्रमण कराता है, वो परिणाम भी मुझे परिभ्रमण कराएगा, ऐसे परिणाम भी मुझे परिभ्रमण कराएगा, वैसे परिणाम भी मुझे परिभ्रमण कराएगा। ये बात समझ में आने लगती है, तो ये अनंत प्रकार का अर्थ उसमें समझ में आता है। जब अपने अनुभव में आने वाले परिणाम उसमें परिभ्रमण का कारण दिखाई देता है तो इसके लिए क्या समाधान करना चाहिए, इसकी सूझ भी आने लगती है। ऐसा अनंत अर्थ इस वाक्य में समाया हुआ है, ऐसी बात है इसमें। जिसको परिभ्रमण की चिंतना आई और उस चिंतना के कारण से किसी भी कीमत पे ये परिभ्रमण हमको मिटाना ही चाहिए, ऐसा एक निश्चय, ऐसा निर्धार जिसको होता है उनको अपने आत्मकल्याण के विषय में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसकी सूझ आ जाती है। उसको कहते हैं मोक्ष मार्ग की दिशा की सूझ, दिशा सूझ कहते हैं उसको, वो आ जाती है। इसलिए इस चिंता के कारण से दर्शन वो भी काफी मात्रा में मंद हो जाता है इस चिंता के वशात। दर्शन वो बहुत मंद होता है और चिंता साथ साथ उदासीनता को भी लाती है। तीव्र चिंता है तो उदासीनता को लाएगी लाएगी और लाएगी। घर में भी कोई उतना बीमार होता है कि इसका जीने का, जीने मरने का एक सवाल पैदा हो जाता है, बड़ी चिंता का विषय हो जाता कि नहीं हो जाता। ऐसी परिस्थिति में क्या घर में मिठाइयां बनाई जाती है क्या है? अरे सादा भोजन भी भाता नहीं है। अगर चिंता बहुत हो जाती है, सांसारिक कार्यों की चिंता, सांसारिक प्रसंगों की चिंता में भी खाने का पीने का नींद आने का सब छूट जाता है, ये समों का अनुभव का विषय है कि नहीं है, है? लेकिन वो उदासीनता यथार्थ नहीं है। परिभ्रमण की चिंतना से जो उदासीनता आएगी वो यथार्थ है, क्योंकि इसमें दर्शन मोहमंद होता है और दर्शन मोहमंद होने से मति ज्ञान निर्मल होता है और मति ज्ञान निर्मल होने से आत्मकल्याण के परिणाम कौन से हैं और आत्मा के अकल्याण के परिणाम कौन से हैं वो बात समझ में खुद को आने लगती है। और इसका उपाय वो कर सकता है और वो उपाय में सबसे पहली बात वो होती है कि मुझे किसी भी कीमत पे ये परिभ्रमण मिटाना ही है, इस ऐसा कार्य में करके ही रहूंगा, इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए मैं तैयार हूं। ये परिस्थिति परिणामों की हो जाएगी ऑटोमेटिक। इसको कहते हैं दृढ़ मुमुक्षुता, उसको कहते हैं सच्ची मुमुक्षुता या मुक्त होने की सच्ची भावना वाला जीव, उसको ही कहते हैं। बस ये मोक्ष का मंगल शिलान्यास है। मोक्ष तो 14 गुण स्थान के बाद होने वाला है, निर्वाण पद सिद्ध पद, उसका शिलान्यास ये निर्धार में है। जिसको ये निर्धार हो गया उसके परिणाम में मैं कहाँ खड़ा हूं और मुझे क्या करना है उसका अंतर का नाप आता है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियलिटी समझ में आती है। और वही संवेग को उत्पन्न करता है। अरे मेरा मोक्ष पद उतना दूर है, जिसके लिए मैंने निर्धार किया है वो चीज तो बहुत दूर है मेरे लिए, मेरे को जल्दी से अपना काम करना पड़ेगा। इतना दूर जाना है और धीरे धीरे चलूं, ये बात बनने वाली है ही नहीं। प्रमाद से, शिथिलता से काम नहीं होता है, यानी धीरे धीरे हो जाता है वो समझ बराबर नहीं है, ऐसा बराबर समझ में आ जाता है। इसलिए उनको संवेग उत्पन्न होता है, वो त्वरा से अपना काम करने को चाहता है। और इस जीव के अपने आत्मकल्याण रूप प्रयोजन के विषय में दृष्टि बहुत तीक्ष्ण और सूक्ष्म हो जाती है। संगनी पंचेंद्रिय जीव के ज्ञान में वो प्रकार बहुत अच्छी तरह है कि जहां भी अपना सुख दुख का प्रयोजन है बहुत अच्छी तरह वो समझ लेता है। समझता है कि नहीं समझता? छोटी मोटी बातों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नुकसान होता है, पकड़ लेता है कि नहीं पकड़ लेता है? जहां भी प्रयोजन माना है वहां, यहां अपना प्रयोजन की पकड़ आती है कि मेरा आत्मकल्याण वही मेरा प्रयोजन है, और उस विषय में वो उतना सावधान हो जाता है, उतना सावधान हो जाता है कि अपने परिणामों पर उसकी निगाह है वो बहुत सूक्ष्म और तीक्ष्ण हो जाती है, और सतत रूप से वो निगरानी करते रहता है कि मुझे कहाँ नुकसान हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, इसके पीछे मेरा कौन सा मूलभूत कारण है, रूट कॉज क्या है, ये सब बात फिर देखने के लिए वो गहराई में जाता है और सतत अपने परिणामों का अवलोकन में वो इसलिए आता है कि नुकसान तो वहाँ ही होता है और उनको नुकसान करना नहीं है। इसलिए वो जागृत हो जाता है, और जितनी जागृति होती है उतनी मुमुक्षुता होती है, जागृति बहुत होती है तो मुमुक्षुता भी बहुत होती है। इस तरह से अवलोकन के स्टेज में ये परिभ्रमण की चिंतना वाला क्रमशः आ जाता है, और ये इस प्रयोग में बहुत से बात समझ में आती है। अपने परिणामों के विषय में जो कुछ नहीं समझ में आती थी, ऐसी बहुत सी बातें समझ में आती है, और उस विषय में फायदा भी बहुत होता है क्योंकि एक प्रयोगात्मक भूमिका है। आत्मकल्याण के विषय में विवेक होना, उसको कहते हैं आत्मविवेक, आत्म जागृति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि अपना प्रयोजन वहाँ भाषित हुआ है। इसलिए जहाँ प्रयोजन भाषित होता है वहाँ जीव सतर्क हो ही जाता है, हुए बिना रहता नहीं है, कि नहीं? इस तरह से जी इधर एक विकल्प को वारंवार स्मरण करना आवश्यक है, यानी इस विषय को वारंवार स्मरण में लेना यानी भूलना नहीं। क्या होता है कि कृपालु देव ने कहा इसलिए हम इस बात को समझ लेते हैं और कभी कभी इसका स्मरण करते हैं। बार बार स्मरण नहीं होता है, वास्तव में तो लगातार स्मरण रहना चाहिए, लगातार रहना चाहिए। बार बार भी क्या, लगातार रहना चाहिए। क्योंकि ये चिंता कब छूटती है? चिंता छूटती नहीं है, कंटिन्यू रहती है हमेशा। सबको जो भी चिंता पैदा होती है वो चालू ही रहती है। ये सबसे बड़ी चिंता है, बहुत बड़ी चिंता है। इससे कोई बड़ी चिंता है ही नहीं, इतनी बड़ी चिंता है। और जीव देखता नहीं है इस बात को, या समझते हुए भी सुनते हुए भी अनसुना कर लेते हैं। एक बहुत बड़ी करुणाजनक परिस्थिति है। बहुभाग मुमुक्षु विस्मरण कर जाते हैं, छोटे मोटे उदयम के कार्य में लग जाते हैं और इस बात को विस्मरण कर जाते हैं। बार बार विस्मरण करके ऐसी परिस्थिति में आना चाहिए कि जहाँ तक निर्धार नहीं हो, निश्चय नहीं हो कि परिभ्रमण से छूटना ही है, ऐसा निश्चय नहीं हो वहाँ तक वो बात चिंता मिटनी नहीं चाहिए या छूटनी नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हाँ ऐसे चिंता आएगी तो ऐसे ही निरस हो जाओगे। रस तो तब पड़ता है कि चिंता से निरसपना आया नहीं, इसलिए तो जो रस है वो दर्शन मुख को बढ़ाता है, और दर्शन मुख बढ़ गया है इसलिए तो चिंता आती नहीं है। समझते हुए भी चिंता नहीं आने का कारण वो है कि हमारा दर्शन मुख का रस ज़्यादा है। दर्शन मोह, हाँ हाँ, रस को घटाने से दर्शन मोह कम होगा। दर्शन मोह कम होने से ये चिंता जो नहीं आती है वो आने का अवकाश होगा, ऐसी बात है। अब उस चिंतना में प्रवेश करने के लिए दर्शन मोह की जिस मात्रा में मंदता होनी चाहिए उस मात्रा में मंदता नहीं है, यानी दर्शन मोह बहुत तीव्र है, इसलिए हमारी समझदारी फेल हो रही है। समझते तो है ही, सत्संग के दौरान बात तो समझ में आई है, लेकिन वो हमारी समझ फेल हो रही है। इसका कारण हमारा दर्शन हो बहुत तीव्र है। दर्शन हो बहुत तीव्र है, इसका दूसरा अर्थ घटन करे तो हमको संसार बहुत प्रिय है, और संसार बहुत प्रिय है तो संसार का परिभ्रमण भी बहुत प्रिय है। ये हमारी हालत है, तो भोगना पड़ेगा परिभ्रमण के दुखों को। ऐसी परिस्थिति में तो परिभ्रमण के दुखों को भोगना ही पड़ेगा। इसलिए दर्शन मोह की मात्रा कम होने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिसको जैसी जिस प्रकार का अटकाव है, अड़चन है, अवरोध है, उसको दूर करने का उपाय करना पड़ेगा। वो अवरोध ऐसा है कि किसी को किस प्रकार के उदय भाव में रस है, किसी को किस प्रकार के उदय भाव में रस है, किसी को किस प्रकार के उदय भाव में रस है। सबों के लिए बाह्य साधन तो सत्संग है, लेकिन अंतरंग साधन सबों का अलग अलग है। दर्शन मोह की मात्रा घटाने के लिए और इसके लिए सत्संग में हम ये प्रयोग कराते हैं कि भाई आप अपने परिणाम को बताइए, आपके परिणाम कहाँ कहाँ चलते हैं, कैसे कैसे चलते हैं बताइए, मालूम पड़ेगा कि आपको कहाँ रस पड़ता है और आप कहाँ अटके हुए हैं। इससे आपको मार्गदर्शन मिल सकता है कि आपको वहाँ ऐसा करना चाहिए, वहाँ वैसा करना चाहिए। जब भी आपका रस है या आपका जो प्रतिबंध है, आपका जो अवरोध है, वो दूर हो सकता है और आप परिभ्रमण की चिंतना में आ सकते हो। तो इस प्रकार की चर्चा सत्संग में हुए ये बात बहुत कम जगह है। देखिए कहीं हो तो बता दीजिए, हैं? क्योंकि अपने परिणामों की बात बताने में कई प्रकार के दोष हमको बताना पड़ता है। इसके लिए हमारा मान को हमको मुक्त छोड़ना पड़ता है, इस प्रकार के असरलता को भी हमको छोड़नी पड़ती है। मान और माया दोनों को कम करने पर तो ये प्रवृत्ति होगी। हाँ, यहाँ से शुरुआत होगी। उस प्रकार का सत्संग चले, फिर भी हमारे परिणामों की चर्चा नहीं निकाले, तो फिर छूटने का अवकाश कहाँ रहेगा, कहाँ होएगा, वो बताइए। कि फिर तो कोई छूटने का अवकाश है ही नहीं। इसलिए प्रयोग से हमें मार्गदर्शन लेना है कि हम कहाँ कहाँ भूल करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, और उसमें दर्शन मोह का संबंध कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से है, किस परिणामों में हमारी कर्ता बुद्धि काम करती है, किस परिणामों में हमारी सुख बुद्धि काम करती है, कैसे परिणामों में हमारी आधार बुद्धि चल रही है, कहाँ कहाँ हमको अपनत्व होकर के प्रतिबंध में हम खड़े हैं, ये सब बातें जब हम खोलेंगे तब तो इसका कोई रास्ता निकलेगा। ये तो दर्द है, कोई दर्द ही नहीं बताएं तो दवाई होगी कहाँ से? हाँ, कोई दर्द नहीं बताएं डॉक्टर को तो डॉक्टर क्या बताएगा, जितना बताएगा उतना ही काम करेगा। तो कोई कहते हैं, कोई छिपा के कहते हैं, कोई अधूरा छुपाते हैं, कोई ज़्यादा छिपाते हैं, कोई थोड़ा छिपाते हैं, कोई बिल्कुल छिपाते हैं, तो उसमें तो कोई सुधार होने का अवकाश है। इसलिए परिभ्रमण की चिंतना करने का सबसे प्रथम कार्य है वो बात समझ में भी तत्वज्ञानियों के क्षेत्र में है ही नहीं आजकल, और जहाँ है वहाँ भी इने गिने लोग इस प्रथम सीढ़ी पे पैर रखते हैं, बहुभाग लोग नहीं रखते हैं, ये हालत है। और इसका मतलब ये हुआ कि हमको हमारे परिभ्रमण की चिंता है ही नहीं। तो मुक्त होने का सवाल कहाँ से हो गया? और इस वाक्य में कही हुई चिंतना किए बिना क्या कहते हैं, उसके लिए दृढ़ होकर तरसे बिना, गुजराती में तो झुरिया विना शब्द लिखो, दृढ़ थी ने झुरिया विना, झुरनाई झुरनाई होती है, तड़पे बिना, इसके लिए तड़पन हुए बिना, मार्ग की दिशा का भी अल्प भान नहीं होता। मार्ग की दिशा का भान होना और दिशा के कुछ अंश का भी भान संभव नहीं है। पूरा भान होना तो संभव नहीं है, लेकिन एक अंश में भी भान नहीं होगा। और विधि की भूल वही है कि ऐसे हुए बिना हम आत्मकल्याण की रीति नीति अपने मन कल्पना से, मन की कल्पना से निश्चित कर लेते हैं और अपना काम करने को लग जाते हैं, जैसा जिसको ठीक लगे वैसा। वो ज्ञानी की आज्ञा से बाहर है। क्या? ज्ञानी की आज्ञा से बाहर है, ये योजनाबद्ध बात है, सिस्टमेटिक बात है। काम करने की कोई पद्धति होती है, और ये संसार का पूरा नाश करना, ये तो एक सबसे बड़ा कार्य है जो अनंत काल में हमने नहीं किया है। ऐसा बहुत बड़ा कार्य है, इसकी पद्धति समझे बिना हम वैसे ही कोई न कोई बात निश्चित कर लेते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, वो कोई सफलता का मार्ग है ही नहीं। अल्प भान भी नहीं होता। पूर्व में किसी को हुआ नहीं, मैंने सबों को ये वेदना, चिंतना, वेदना और झुरना आई है, किसी को पूर्व में हुआ ही नहीं। और इतिहास देखते हैं तो बात मालूम हो जाती है। वो आगरा के शिविर में बात चली थी, देखो सोगानी जी की क्या हालत हुई थी, बेंसर की क्या हालत हुई थी, ये तो इतिहास खुला हो गया यार। उन लोगों के जीवन परिचय में से ये बात खुली हुई है। तो सबों की यही बात है, वो जो कहते हैं कृपालु देव, वो बात सही है, वो भी अपने अनुभव से कहते हैं, वो भी अपने अनुभव से कहते हैं। यथार्थ प्रकार से दर्शन मोह का अनुभाग कम होने की जो कार्य पद्धति है, इसका ये प्रथम चरण है। इसलिए कहा कि पूर्व में किसी को हुआ नहीं और भविष्य काल में भी किसी को नहीं होगा। कोई दूसरे रास्ते से, दूसरे उपाय से आत्मकल्याण करना चाहे, हो ही नहीं सकता। बात वो है उसमें कि जब ऐसी चिंतना आती है, उसकी वेदना आती है, आत्मा रोती है इसके लिए। क्या राग नहीं हुआ है इधर? परिभ्रमण मिटाने का राग नहीं हुआ, विकल्प नहीं हुआ, ऊपर का द्वेष का विकल्प भी नहीं हुआ, ये मेरे को अणगमा है जन्म मरण से, मृत्यु नहीं चाहता है, उसमें उसका द्वेष होता है, शोक होता है कि नहीं होता है। आत्मा जब रोती है भीतर से, तब सबसे पहला काम जो होता है वो अंतःकरण की शुद्धि का होता है। वो जीव शुद्ध अंतकरण से अब आत्मकल्याण करने के लिए तैयार हुआ। इसके पहले वो आत्मकल्याण करने के लिए जो भी कुछ करता था वो मलिन अंतकरण रख करके करता था, शुद्ध अंतकरण से नहीं करता था। अंतकरण में मलिनता होती है, अंतकरण में संसार के प्रति प्रीति और रुचि होती है, और हमको आत्मकल्याण भी करना है, वो बात कभी बनने वाली है। शुद्ध अंतकरण भी होता है और संसार की उपासना का था, ये सबसे बड़ी भूल थी। अभिप्राय की जो भूल होती है उसमें सबसे बड़ी भूल कौन सी, किस प्रकार के अभिप्राय के, ये प्रश्न उठाया जाए, उठाना चाहिए कि अभिप्राय की भूल से जीव संसार में परिभ्रमण करते हैं। और ऐसे विपरीत अभिप्राय बहुत प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के हैं, उसमें सबसे बड़ी भूल वाला अभिप्राय कौन सा है कि संसार की उपासना का जो अभिप्राय है वो परिभ्रमण की वेदना के काल में वो अभिप्राय का नाश हो जाता है। ऐसे अभिप्राय का नाश हुए बिना संसार का नाश होने की कोई प्रक्रिया चले, कोई प्रोसेस चले परिणमन में, वो बात कतई संभव नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कभी भी संभव नहीं है। इसलिए अनुभव से और बहुत गहरी विचारणा से, अनुभव से और बहुत गहरी विचारणा से यहाँ कृपालु देव ने इस बात का प्रतिपादन किया है, ऐसा समझना चाहिए। और जिसको परिभ्रमण की चिंता और वेदना नहीं आई हो उसने तो इस बात को, इस वाक्य को ज्ञानी की, श्री गुरु की आज्ञा समझ करके, आज्ञा तोड़ने का पाप हमको नहीं करना है, इस तरह से उसकी गंभीरता, इस विषय की सिंसियरिटी को अंगीकार कर लेना चाहिए कि हमको आज्ञा पर पैर रखना नहीं है, आज्ञा को कुचल करके आगे नहीं बढ़ना है। ऐसे संसार में आज्ञा को कुचल करके आगे बढ़ेंगे बहुत दुखी हो जाएंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे। इस तरह से भविष्य काल में भी इसके बिना काम नहीं होने वाला है, हमने तो ऐसा जाना है, हमने ऐसा पढ़ा है ऐसा नहीं कहा, ऐसा सुना है ऐसा नहीं कहा, हमारे अनुभव से ऐसा हमने जाना है। चार सौ चौदह नानी पुरुष का योग होने के बाद जो आत्मभाव से, स्वच्छंदता से, कामना से, रस ज्ञानी के वचनों की उपेक्षा करके अनुपयोग परिणामी हो करके अनुपयोग परिणामी मैंने बेसावधान हो करके संसार का सेवन करता है, वह पुरुष तीर्थंकर के मार्ग से बाहर है, ज्ञानी के मार्ग से बाहर है ऐसा कहो या तीर्थंकर के मार्ग से बाहर कहो, एक ही बात। ऐसे कहने का तीर्थंकर का आशय है, यह कहने का तीर्थंकर का आशय है, उनकी वाणी का आशय वो है कि ज्ञानी के ज्ञानी पुरुष का योग होने पर उनकी जो आज्ञा है हमारी भूमिका के लायक, उनको पूरी ताकत से उठा लेनी चाहिए, पूरी ताकत से, चाहे कुछ भी हो जाए, वो आज्ञा उठाने में कुछ भी कुछ होने वाला नहीं है, चिंता मत करिए, हिम्मत मत हारिए, लेकिन तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए हमको ये काम करना ही है, करना ही है, उसमें हमारी भलाई है, वरना अनंत दुख का कोई अंत आने वाला नहीं है। ये जुड़ना भी ऊपर ऊपर से नहीं आनी चाहिए, बहुत दृढ़ता से आनी चाहिए, ऐसा कहने का मतलब है। आत्मकल्याण का वियोग बर्दाश्त नहीं हुए, बहुत दृढ़ता से आए, सहन नहीं हुए, असह्य परिस्थिति आनी चाहिए, तो तभी ये संसार की उपासना का अभिप्राय छेद होकर के अंतकरण की शुद्धि होगी। इसके पहले अंतकरण शुद्ध नहीं होगा, ये बात होने वाली है। मलिन अंतकरण से कुछ भी करो, मलिन अंतकरण रख करके कुछ भी करो, क्या फायदा होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आप सबको यही खोजना है कि कैसे ये हमारा चिंतना में प्रवेश हुए, वही आप सबको खोजना है। कानून सबके लिए एक है, उसके बाद दूसरा क्या जानना या इसके बाद दूसरा क्या करना वो मालूम होता है। इसके पहले क्या जानना क्या करना ये मालूम होता ही नहीं, फिर भी हम जानते हैं और करते हैं, वो केवल स्वच्छंद के अलावा और कुछ है ही नहीं। देखिए, ऐसे मार्गदर्शन वाली बातें शास्त्र में ढूंढने जाए तो मिलने वाली नहीं है। वर्तमान उपलब्ध जो शास्त्र के साहित्य है हमारे पास, उसमें ऐसी बात ढूंढने को जाएंगे तो मिलने वाली नहीं है। ये एक बहुत करुणा से, अनंत करुणा से ऐसी बातें उन्होंने अपने अनुभव से जो प्रसिद्ध की है, इसका सही मूल्यांकन कर लेना चाहिए।